हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पूरे दो दिन बाद विदिक घर वापस आया था। घर आते ही उसने दिव्याना पर हमला बोल दिया था। ना जाने कैसे, पर वो जान चुका था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। उसने दिव्याना को दीवार पर लगा रखा था और उसके गर्दन पर चाकू रख रखा था। विदिक के मुंह से सच सुनकर दिव्याना उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। मुझे ऐसे लुक मत दो, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में काफी सवाल चल रही होंगे। मुझे कैसे पता चला, कब पता चला, पता चल ही गया था तो मैंने कुछ किया क्यों नहीं। दिव्याना के मन में जो भी सवाल उठ रहे थे विदिक ने वो सब बता दिए। अचानक दिव्याना के चेहरे के भाव बदले, उसके मन में जो भी डर था वो पल में गायब हो गया और उसने विदिक को खुद से दूर धकेल कर उससे निपटने की शुरुआत कर दी थी। दिव्याना ने सबसे पहले विदिक के पेट में किक मारी जिससे वो कुछ कदम दूर हो गया। इससे पहले कि विदिक खुद को संभालकर जवाबी हमला बोलता, दिव्याना ने डाइनिंग टेबल से एक प्लेट उठाई और उसके सिर पर मारने के लिए फेंकी। विदिक हट गया और दिव्याना का निशाना चूक गया। विदिक जानबूझकर कोई हमला नहीं कर रहा था, वो बस दिव्याना के हमलों से बच रहा था। आगे हमला करने के लिए दिव्याना ने कुर्सी उठाई और विदिक के सिर पर मारने के लिए बढ़ी। वो उसके पास आई तब विदिक ने कुर्सी के पैर को पकड़ लिया और एक जोरदार धक्का दिया। दिव्याना कुर्सी सहित पीछे जा गिरी। ये सब करने के बाद विदिक पागलों की तरह हंस रहा था। दिव्याना एक एजेंट थी और उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छे से हुई थी। इस हमले से उसका कुछ नहीं हुआ, वो खुद को संभालकर तुरंत ही उठ गई। मानना पड़ेगा एजेंसी वालों ने पहली बार एक ढंग का एजेंट भेजा है, विदिक हंसते हुए बोला। दिव्याना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वहां पास ही टेबल पर रखा एक बड़ा और भरी सा शोपीस उठा लिया। इससे पहले कि वो विदिक पर उससे हमला करती, विदिक पहले ही बोल पड़ा, उसे फेंकने की सोचना भी मत, एंटीक पीस है, मैंने बार्ली की ऑक्शन से पूरे 1 करोड़ में लिया था। उसे एक खरोच भी आई तो सोच लेना तुम्हारे शरीर पर उतनी ही जख्म होंगे। ये तो बाद में पता चलेगा, दिव्याना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है फिर, यही सही, विदिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। मैंने इसे खरीदा था तो तोड़ूंगा भी मैं ही, कहते हुए विदिक दिव्याना की तरफ बढ़ा और उसके पेट में एक जोरदार किक किया। इसी के साथ दिव्याना नीचे गिर गई और उसके हाथ वो शोपीस गिरते ही टूट गया। नीचे गिरने के बाद भी दिव्याना ने हार नहीं मानी, उसने विदिक का पैर पकड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। दिव्याना फुर्ती दिखाते हुए उठी और विदिक के पास आई। विदिक ने भी वही किया, उसने दिव्याना को नीचे गिरा दिया और जल्द ही वो उसके ऊपर लेटा था। तुम लोगों ने क्या मुझे कोई गली मोहल्ले का चोर उचक्का समझ रखा है जो मेरे पीछे आए दिन कोई ना कोई लगा रहता है, विदिक बोला। उसने अपने हाथों से दिव्याना के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। गली मोहल्ले के चोर उचक्के को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कहाँ करनी पड़ती है विदिक राणा, तुम अच्छे से जानते हो तुम क्या चीज हो। मुझे बस मेरी बटरफ्लाई चाहिए, बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, विदिक ने कहा। उसकी बात सुनकर दिव्याना हंसने लगी। रियली, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा पाओगे? तुम विदिक राणा हो तो मैं भी, बोलते हुए दिव्याना रुक गई। वो अपनी आइडेंटिटी विदिक के सामने रिवील नहीं कर सकती थी। तुम दिव्याना बजाज हो, विदिक ने उसकी बात को पूरा किया। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर दिव्याना के होश उड़ गए। तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, दिव्याना हैरानी से पूछा। कहा ना, तुम लोगों ने विदिक राणा को अभी तक बहुत कम आंका है। तुम्हें क्या लगता है तुम पहले दिन से मेरे घर रह रही हो, मेरे सामने की सीधी साधी बनने का दिखावा करोगी, एक नकली फैमिली मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे पहले दिन से ही सब पता है दिव्याना बजाज, कभी कभी सामने वाले से खेलने में बहुत मजा आता है, तुम्हारे साथ तो बहुत ही मजा आया। काश मैं तुम्हें पहले ही सच बता देता तो ये आज वाला खेल बहुत पहले हो चुका होता, विदिक हंसते हुए बोला। वो अभी तक दिव्याना के ऊपर था और उसने उसे पूरी तरह काबू कर रखा था। दिव्याना उससे छुटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर पहले दिन से सब जानते थे तो फिर तुमने ये दिखावा क्यों किया? क्यों अच्छे बनते रहे मेरे सामने और हमदर्दी का नाटक किया? क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि तुम्हारी प्लानिंग मुझे पता चलते ही तुम्हारा प्लान बिगड़ सकता है? और तुम्हें सच में लगता है विदिक राणा को उससे फर्क पड़ता है? कभी सोचा है मेरी बटरफ्लाई के बारे में मैंने तुम्हें क्यों बताया? दिव्याना उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। विदिक उसके बारे में सब जानता था, फिर भी उसने अपनी जिंदगी के सबसे करीबी और खास शख्स के बारे में उसे बताया। तुमने मुझे उसके बारे में क्यों बताया? तुम जानते हो ना कि अगर उस लड़की को किसी सीक्रेट एजेंट ने पकड़ लिया तो उसे खतरा हो सकता है। तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है विधिक। उसकी जितनी परवाह मुझे है उतनी तो खुद उसे भी नहीं है। मेरे आदमी और मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो मेरा सब जान चुकी थी तो काफी सतर्क रहने लगी, पर तुम लोगों के काम करने का तरीका अलग है। मैं जानता था कि उससे मिलने के बाद कोई भी आसानी से अंदाजा लगा लेगा कि वो मासूम है। गुनाह करना तो दूर की बात है, सच्चाई पता चलने के बाद एक थप्पड़ तक नहीं लगा पाई मुझे। मैंने उसके फ्रेंड्स तक को मार दिया, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर अपने सवालों के जवाब दे दे। बहुत मासूम है मेरी बटरफ्लाई। आंशी के बारे में बात करते हुए विधिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विधिक के चेहरे पर इमोशन देखकर दिव्याना ने उस पर हावी होने की कोशिश की। वो विधिक को धकेलकर खुद से दूर करना चाहती थी। इतना आसान नहीं है मिस बजाज, कोशिश भी मत करो। विधिक के चेहरे के भाव फिर से सख्त हो गए। आखिर तुम लोगों ने उसे ढूंढ ही लिया। अगर तुम हमारे थ्रू उसे ढूंढवाना चाहते थे तो तुमने अब तक उसकी कोई फोटो क्यों नहीं दिखाई? ऐसा तो हो नहीं सकता तुम दोनों इतने दिनों तक साथ रहो और तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो ना हो। दिव्याना के मन में काफी सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ विधिक के पास था। उसने विधिक से फाइट करनी बंद कर दी ताकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। कहा ना, बस उसे ढूंढवाना चाहता था, ना कि ये तुम लोग उसे पकड़ो। वो तुम्हारी एजेंसी तक पहुंच चुकी है और इसमें तुम्हारा ही हाथ होगा। बस यूं समझ लो, तुम्हारा तमाशा बंद करने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हारी एजेंसी वालों ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर का हर एक टुकड़ा उनके पास टुकड़ों में ही पहुँचेगा, विधिक ने सर्द आवाज में कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। दिव्याना को अमन और आंशी की शादी के बारे में पता था, पर इस वक्त विधिक को सच बताने का सही समय नहीं था। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले वो दर्द से जोर से चिल्लाई। विधिक ने पास में टूटे शोपीस का एक टुकड़ा उठाया और उसे दिव्याना की कमर में घोंप दिया। आह! दिव्याना की आंख में आंसू थे और विधिक के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट। वो उसके ऊपर से उठा और उसका पैर घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया। विधिक ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान रखी थी और साथ ही उसने कॉल करके शाहिद को बुलाया। शाहिद के आते ही उसकी मदद से विधिक ने दिव्याना को कुर्सी पर कस के बांध दिया। दिव्याना की दर्द से हालत खराब हो रही थी। विधिक ने जानबूझकर ऐसी जगह पर वार किया था जिससे एक बार ही उसे घायल करने के लिए काफी हो। ये तो बहुत खूबसूरत है बॉस, मुझे लगा ये भाभी है, पर ये तो आपकी दुश्मन निकली। ये दुश्मन नहीं है शाहिद, मेरी। ये तो मेरी सबसे बड़ी दोस्त बनने वाली है जो मेरी मदद करेगी तुम्हारी भाभी तक पहुँचने में। चलो अब तुम जाओ, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है, विधिक ने मुस्कुरा कर कहा और शाहिद को वहाँ से भेज दिया। शाहिद के वहाँ जाते ही विधिक ने एक चेयर खिसकाई और दिव्याना के सामने बैठ गया।
चलो अब इत्मीनान से तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देते हैं। हाँ, तो क्या कहा था तुमने कि मुझे कब से पता है कि तुम कौन हो? विधिक बोला। उसने दिव्याना के चेहरे की तरफ देखा। लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, चलो पहले तुम्हारा इलाज करते हैं, विधिक ने दिव्याना की कमर की तरफ देखकर कहा। उसका सफ़ेद कुर्ता खून से लाल हो गया था। विधिक अंदर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, साथ में पेन किलर्स और इंजेक्शन भी थे। वो दिव्याना के पास आया और उसका कुर्ता ऊपर करके जख्म को साफ करने लगा। पहली बार किसी चोट देने वाले को ही मरहम लगाते देखा है, दिव्याना ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। विधिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी गंभीरता से उसकी चोट को साफ करके उस पर स्टिचेस लगा रहा था। वो ये सब काफी प्रोफेशनली कर रहा था। स्टिचेस लगाने के बाद उसने दिव्याना को इंजेक्शन दिया ताकि उसे इन्फेक्शन न हो जाए। काफी प्रोफेशनल लगते हो, दिव्याना ने पूछा। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। क्यों, तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम इस तरह चोट का ट्रीटमेंट करना नहीं सिखाते क्या? विधिक ने जवाब देने के बजाय एक और सवाल पूछ लिया। हाँ सिखाते हैं, अब मुझे बताओगे कि तुम्हें तो पता चला मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मुझे पहले दिन से ही पता था, जिस तरह से तुम मुझे मिली और बाकी सब चीजें हुई। जब तुमने अपनी नकली फैमिली से मिलवाया तो मैं कन्फर्म हो गया। तुम मेरे लिए काफी लकी रही, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे मेरी आंशी दिखी। तुम लक जैसी चीज में विश्वास करते हो। अच्छा क्या हो जो तुम्हारी बटरफ्लाई कोई और भौंवरा देखकर उसके साथ उड़ जाए? जैसे ही दिव्याना की बात खत्म हुई, विधिक ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया। मुझसे सोच समझ कर बात करना, मैं ये बिल्कुल नहीं देखता कि मेरे सामने लड़का है या लड़की। तुम्हें आधी कहानी सुनाई है इसलिए ज्यादा नहीं पता, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक तो उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मेरे सामने कुछ भी उल्टा सीधा कहे। अच्छा, अगर वो तुम्हारे सामने उल्टा सीधा कह दे तो तुम क्या उसे भी इसी तरह मारते? दिव्याना ने पूछा। तुम्हें कोई शक है क्या? उसने मेरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसके बाद वो मेरे यहाँ से भाग गई थी। मेरे खास आदमी ने उसे किडनैप किया और उसके साथ बहुत टॉर्चर किया। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो मर जाती। किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उसे बचा लिया, पर इतनी भी अच्छी नहीं, वो मुझसे ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाई। मैंने उसको उसी के घर पर होस्टेज बनाकर रखा, लेकिन वो फिर भाग गई। विधिक ने शॉर्ट में दिव्याना को आगे की कहानी बताई। इतने दर्द में भी दिव्याना हंस रही थी। एक लड़की तो तुमसे संभलती नहीं है और सीक्रेट एजेंट को संभाल लोगे? तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? तुमने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस उसी के पीछे पड़े हो? उसके डॉक्यूमेंट पर उसके बाप का नाम शिव जिंदल लिखा हुआ था। उसने बताया था उसके पापा मुंबई में बिजनेस करते हैं। मैंने वहां जाकर जितने भी शिव जिंदल हैं उनके साथ बिजनेस करने की सोची। वहां मुझे 4 शिव जिंदल नाम के आदमी मिले, पर अनफॉर्चुनेटली उनमें से सिर्फ एक आदमी की बेटी थी और वो सिर्फ 4 साल की थी। अब तक समझ नहीं आया वो यहाँ चंडीगढ़ क्यों आई है, विधिक बोला। दिव्याना गहरी सांस लेकर छोड़ी। विधिक के इरादों से साफ था कि वो आसानी से उसे यहाँ से जाना नहीं देगा, और इस मामले में वो एजेंसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। अब जो भी करना था वो दिव्याना को अपने दम पर करना था। शशिकांत।